नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते, खासकर रील्स देखते हुए, घंटे कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला?
हाँ, ये तो आजकल बहुत आम बात हो गई है।
अगर ऐसा है तो आज की हमारी चर्चा शायद आपके बहुत काम की हो। आज हम कुछ उपलब्ध स्रोतों, खासतौर पर एक डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये शॉर्ट फॉर्म वीडियो, मतलब रील्स वगैरह, हमारे दिमाग पर आखिर कर क्या रही हैं।
बिल्कुल। और क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ जरूरी काम कर रहे हों और ध्यान एकदम से कहीं और चला गया?
हाँ, होता है।
या कोई रील देखी और थोड़ी देर बाद याद ही नहीं कि क्या देखा था?
जानकारी यही बताती है कि ये सब लक्षण उस चीज से जुड़े हो सकते हैं जिसे आजकल ब्रेन रॉट कहा जा रहा है।
ब्रेन रॉट, ये सुनने में ही अजीब है।
और ये सिर्फ कोई ऐसा वैसा शब्द नहीं है, है ना? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर भी चुना है।
जी हाँ, मामला गंभीर है।
तो आज इसी विश्लेषण के जरिए समझते हैं कि ये है क्या वाला, ये रील्स इतनी, मतलब, लुभावनी क्यों है, एडिक्टिव क्यों है, और हमारे दिमाग पर इनका असर क्या है, और क्या इससे बचने का कोई तरीका है।
हाँ, और ये मुद्दा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश सोच रहे हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ सोशल मीडिया एप्स बैन कर दें।
सच में
बैन? मतलब ये तो वाकई सीरियस बात है।
बिल्कुल।
तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि ये ब्रेन रॉट आखिर है क्या चीज।
हाँ, बताइए।
तो विश्लेषण ये कहता है कि ये वो मानसिक हालत है जहां बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा, हल्का फुल्का या एक तरह से कहें तो लो क्वालिटी कंटेंट लगातार देखने से हमारी सोचने समझने की ताकत,
यानी हमारी मेंटल कैपेसिटी,
हाँ, बौद्धिक क्षमताएं, वो कमजोर पड़ने लगती हैं। खास तौर पर जर पड़ता है क्रिएटिविटी पर और गहरी सोच पर, डीप थिंकिंग जिसे कहते हैं।
और इसके लक्षण क्या वो ऐसे हैं जो हम रोजमर्रा में महसूस कर सकते हैं?
बिल्कुल। विश्लेषण में जो लक्षण बताए गए हैं वो शायद कई लोग पहचान पाएंगे। जैसे अचानक भूल जाना कि क्या सोच रहे थे।
अरे हाँ, ये तो होता है।
या किसी जाने पहचाने इंसान का नाम एकदम से जबान पर नहीं आता।
उफ, हाँ, वो भी।
मूड का तेजी से बदलना, कभी गुस्सा, कभी एकदम से खुशी, कभी उदासी। और किसी एक चीज पर फोकस करने में, ध्यान लगाने में बहुत मुश्किल होना।
ये सब तो बहुत कॉमन लग रहा है, पर ऐसा होता क्यों है? मतलब रील्स में ऐसा क्या है?
देखिए, इसका साइंस बड़ा दिलचस्प है। विश्लेषण बताता है कि ये शॉर्ट वीडियोस, ये रील्स, हमें फौरन एक डोपामाइन हिट देती हैं।
डोपामाइन, वो हैप्पी हार्मोन?
हाँ, वही, वो केमिकल जो हमें खुशी या संतुष्टि का एहसास कराता है। इन वीडियोस से जो जानकारी या मजा मिलता है ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में और बहुत तेजी से मिलता है।
अच्छा।
तो दिमाग को ये छोटे तेज झटके इतने पसंद आते हैं कि वो इनका आदी हो जाता है, एक तरह से नशे की तरह।
नशे की तरह? बाप रे। और इसमें ये जो एप्स हैं उनका भी तो हाथ होगा।
हाँ बिल्कुल। विश्लेषण में ये बात साफ है कि एप्स के जो एल्गोरिथम हैं वो इसी तरह से बनाए गए हैं।
कैसे?
वो हमें अंतहीन स्क्रॉलिंग करवाते हैं और हमारी पसंद की मिलती जुलती रील्स दिखाते रहते हैं, ताकि वो डोपामाइन का नशा बना रहे और हम उस लूप में फंसे रहें।
यानी ये जानबूझकर किया जाता है ताकि हम ऐप पर टिके रहें?
एक तरह से हाँ, उनका बिजनेस मॉडल ही है ये। अब इसका दिमाग पर असर देखिए, वो काफी चिंताजनक हो सकता है।
क्या असर होता है?
विश्लेषण में कई स्टडीज का जिक्र है, चीन से, दक्षिण कोरिया से, काफी रिसर्च हुई है।
अच्छा।
और सब एक ही तरफ इशारा करती हैं कि लगातार ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने से हमारी ध्यान देने की क्षमता, मतलब अटेंशन स्पैन,
हाँ,
याददाश्त बनाए रखने की क्षमता, मेमोरी रिटेंशन जिसे कहते हैं, नई चीजें सीखने की स्पीड, और यहाँ तक कि फैसले लेने की हमारी काबिलियत, वो सब कमजोर होती है।
ये तो डरावना है। कोई खास रिपोर्ट या स्टडी जिसका जिक्र हो?
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक 2023 की एक रिपोर्ट का जिक्र है। उसमें पाया गया कि रोजाना अगर 2 घंटे से ज्यादा ऐसा कंटेंट देखा जाए
तो क्या होता है?
तो फोकस और मेमोरी में गिरावट आती है, खास तौर पर उनकी वर्किंग मेमोरी पर असर पड़ता है।
वर्किंग मेमोरी, वो क्या होती है?
मतलब जानकारी को दिमाग में रखकर उसे इस्तेमाल करने की क्षमता, जैसे कोई हिसाब लगाना हो या कोई बात याद रखकर जवाब देना हो।
समझ गया। और बच्चों पर, उन पर क्या असर हो रहा है?
बच्चों पर तो इसका असर और भी ज्यादा नजर आ रहा है। विश्लेषण में 2023 की एक सर्वे का जिक्र था जिसमें करीब 1400 बच्चे शामिल थे।
और क्या पता चला?
आंकड़े सच में चौंकाने वाले थे। 93% बच्चों ने बाहर खेलने से मना कर दिया।
93%?
हाँ। 75% से ज्यादा बिना फोन के खाना नहीं खा पाते थे। 83% को आंखों से जुड़ी कोई ना कोई दिक्कत थी। और 67% में असामान्य सोशल बिहेवियर देखा गया।
बाप रे, ये किस उम्र के बच्चों की बात हो रही है?
ये रुझान खास तौर पर जेन जी, यानी जो मोटे तौर पर 1997 से 2012 के बीच जन्मे हैं, और जेन अल्फा जो 2010 के बाद जन्मे हैं उनमें ज्यादा दिख रहा है।
तो ये सिर्फ डोपामीन का ही खेल नहीं है, कुछ और भी है?
नहीं नहीं, इसमें हाइपर स्टिमुलस का भी बड़ा हाथ है।
हाइपर स्टिमुलस मतलब
तेज आवाज, छिपाचट रंग, बहुत तेजी से बदलते हुए फ्रेम्स, ये सब मिलकर दिमाग को लगातार उत्तेजित रखते हैं। विश्लेषण में इन्हें एंगेजिंग साउंड, विजुअल इफेक्ट्स, फास्ट पेस फ्रेम्स कहा गया है।
अच्छा, तो दिमाग शांत ही नहीं हो पाता?
बिल्कुल, इस लगातार की उत्तेजना के कारण दिमाग को शांत होकर गहरी सोच में जाने का मौका ही नहीं मिलता, और नतीजा पढ़ाई या काम जैसे काम बोरिंग लगने लगते हैं।
हाँ, क्योंकि उनमें इतना स्टिमुलस नहीं होता।
सही कहा, और नींद पर भी बुरा असर पड़ता है, नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है।
उफ़, इतने सारे नेगेटिव असर। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, मतलब इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं?
हम अच्छी बात यह है कि विश्लेषण सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताता, कुछ उपाय भी सुझाता है।
चलिए, तो राहत की बात है, क्या उपाय है?
कुछ ठोस कदम बताए गए हैं। पहला, स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करें, धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें, शायद शुरुआत में टाइमर लगा सकते हैं।
ठीक है, और
दूसरा, अपना फोकस बदलें, शॉर्ट फॉर्म की जगह लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर ध्यान दें, जैसे किताबें पढ़ें, कोई लंबी डॉक्यूमेंट्री देखें या डिटेल्ड आर्टिकल्स पढ़ें।
मतलब दिमाग को थोड़ा ठहराव दें।
बिल्कुल। तीसरा, फिजिकल एक्सरसाइज, उसे अपनी रूटीन में लाएं। विश्लेषण कहता है कि पसीना बहाने से भी नेचुरली डोपामाइन रिलीज होता है, मूड अच्छा होता है।
ये तो अच्छा पॉइंट है, एक्सरसाइज से वैसे भी फायदे ही हैं।
और चौथा, बहुत जरूरी, डिजिटल दुनिया से थोड़ा बाहर निकलें, असली दुनिया में लोगों से मिलें, परिवार, दोस्त, घर के बुजुर्ग, उनके साथ वक्त बिताएं।
हाँ, रियल कनेक्शन। बच्चों के लिए क्या खास है?
बच्चों के लिए खास तौर पर जरूरी है कि उन्हें दूसरी एक्टिविटीज में बिजी रखें, खेलकूद हो, कोई हॉबी हो, पेंटिंग, म्यूजिक, कुछ भी क्रिएटिव।
और अगर लगे कि लत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तब
विश्लेषण एक कड़ा कदम भी सुझाता है कि जिन ऐप से दिक्कत है उन्हें फोन से डिलीट ही कर दें।
डिलीट करना, ये तो मुश्किल होगा शायद।
हाँ, मुश्किल हो सकता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्लेषण इसे एक लत की तरह देखता है, एडिक्शन।
सही।
और किसी भी लत को छोड़ने में टाइम लगता है, विल पावर चाहिए होती है, एकदम से सब बंद कर देना शायद प्रैक्टिकल ना हो, इसलिए धीरे धीरे लगातार कोशिश करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।
ठीक है।
बिल्कुल। तो अगर हम आज की बात को संक्षेप में कहें तो इस विश्लेषण से हमने समझा कि कैसे ये रील्स और शॉर्ट फॉर्म वीडियो का हद से ज्यादा इस्तेमाल ब्रेन रॉट जैसी हालत पैदा कर सकता है।
हाँ।
ये हमारी सोचने की ताकत, हमारी याददाश्त, हमारी मेंटल हेल्थ, इन सबको उस डोपामाइन के एडिक्टिव साइकिल और इन एप्स के एल्गोरिदम के जरिए नुकसान पहुंचा सकता है।
और अंत में एक सवाल जो ये विश्लेषण हमारे सोचने के लिए छोड़ जाता है, वो ये कि क्या हम इस फौरी, आसान से मिलने वाले मनोरंजन के लिए अपनी दिमागी शांति, अपनी गहरी सोच की क्षमता और असल जिंदगी के अनुभवों की कीमत चुका रहे हैं?
बहुत जरूरी सवाल है ये। इस डिजिटल युग में अपने दिमाग को, अपने फोकस को बचाए रखना वाकई एक बड़ी चुनौती है, और इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।